सब जग बादो काल को बिन गुर काल हार सचरती से उबरे दूदा सुन विकार शिव बिरंच असुर सुर जीते काल गन में जरती नानक शरण चरण कमलन की तुम्हें न डारो प्रभ करती सब जग काले वस है बाधा दूजे पाई ओ में कर्म कमाओ दे मन मुख मिले सजाई खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वस प्रभ किया निहचल एक आप अविनाशी सो निहचल ज्योति से त्याई दा रूप न रेख न रंग किच त्रै गुण ते प्रभिन्न किसे बुझाए नानका जिस होए सुप्रसन्न
दरअसल की गल है संसार कोई एक पेशेवर काम नहीं कर रहा था। वो आपका जो ईश्वर को लिया बिल्कुल बराबरी के काम कर रहे थे। तीसरी ताकत जिसको आपके दो ताकत भी उपज होती है वो बिल्कुल निश्चय सहज अवस्था अपने आप अंदर नहीं है। जदों वो मौज हुई उसे हलचल हुई उसने सब पुरुष की गणना की। उस तो बाद काम पुरुष की गणना जिसने इन दो ताकतों को बनाया वो आप निश्चल है अनामी है अलग है अलम है। उन्हें तीन मंडलों के बीच जिस जगह यह ताकत मौजूद है किसी की पहुंच नहीं है वो अपने आप ही है। वाणी स्पष्ट किया गया है उस अनामी ने अपनी मौज का अपनी प्रसन्नता का तीन लोगों का राज काल पुरुष के हवाले किया। आज असी सिर्फ काल पुरुष के मुतालक गुरु साहब को लोग पेश करा बाकी दिया दो ताकत जो है वो अगले साधन का गुरु साहब स्पष्ट कर रहे ये जो काल अपने तीन लोगों के जिस तरीके नाल इस सृष्टि में चला रहा है इससे अपने दो गुना एक स्पेस जिसके अंदर सृष्टि का विस्तार है पसारा है दूसरा टाइम टाइम का दूसरा अर्थ है परिवर्तन। यानी कि जो भी वस्तु इस कालपुरुष की हद में है उसकी सीमा निश्चित है समय निश्चित है उस समय के बाद उसने नष्ट होना है। पल पल हर कहीं वो वस्तु बदल रही है सब जगह बातों का इसे जगत जो किया गया है इस राशि के घर किया गया है। काल जो है चौरासी लाख गणना जो उन्हें की है इन्हू रच सकता है चला सकता है खत्म कर सकता है पर इसके अंदर जो जीवात्मा है वो सब पुरुष का अंश है उसमें ना ये बना सकता है ना ये जो उसे काल की अग्नि का कोई प्रभाव है वो अपनी जगह निश्चित है अटल है। फिर वो ताकत इतनी घट क्यों है उसकी वजह है कर्मा का नियम कर्मा का विधान इस काल पुरुष ने रचा है। सिर्फ इस कार्य कि योगी सृष्टि जो है जो बनाई हुई है उसमें यह बेरोनक ना हो जाए ध्यान रख के देखो अगर इनू आप सारिया सब लोग चलिया जा उस अनामी के भी क्लीन हो जा सृष्टि की रह जाएगा जग जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है। सिर्फ इस रौनक मैं करा वास्ते इन अरुआ इन पिंजरों के अंदर कैद किया गया है। मेन मुद्दा जो है इस सत्संग का वो यही है कि अस किस तरीके ना इस ईश्वरीय ताकत तो बाहर जाना है। काल पुरुष का अपना की इतिहास है इसने त्रेठ योग एक तंत्र और सत्तर योग चौकड़ी मार करके उस अनामी की आराधना की है सब किया है जिस तो प्रसन्न होकर के उस अनामी ने इसमें सारी सृष्टि सौंप दी, इसलिए इसने देखा कि रूहां का इन्हों के बीच रहना बहुत जरूरी है, लाजमी है। उस वेले इसने तीन बार भी उस अनामी को रोक दिया। पहला बार मंगया रूह न अपने पिछोकड़ का ध्यान ना दो, पिछोकड़ का अर्थ है उसनों यह पता ना लगे कि उसका मूल की है। अगर उसमें यह याद आ गया कि वह सतनाम का अंश है, अनामी का अंश है, तो वह फिर अपने मूल के जान ले उदम करे। पहला बार ही मान लिया कि उसको कुछ याद ना, दूसरा बार मान लिया कि इस 84 के जामिया इस कोठरी के अंदर भी जो आत्मा रखा जाए वो तो अपनी जगह प्रसन्न है और किसी भी तरीके का अभाव महसूस ना हो। वही चीज में तुम किसी वेले भी अपने तो दिखते जामिया के अंदर उन्होंने उन्होंने उस अवस्था को अलग करके देखो और तरफा और अपने उस मूल उस कोठरी वाल ही जान लिया जितने जामिया की गल कहनी है। इंसान के उत्ते ही नजर मार करके देख लो, इंसान भी अपंग है, अधूरा है, उसके बाद भी वो मौत को स्वीकार नहीं करता, वो कोठरी में छड़ना नहीं चाहता, वो कहता हाथ नहीं है, अख नहीं है, पैर नहीं है, तो कोई गल नहीं, मैं होर जीव के नाम सवाल से लगा रहे संसार में। ये लीला है इस गल को, ऐसा वर मंग लिया कि हर जीव आत्मा इस कोठरी के विद्यार्थी भी रखना पसंद है। कुछ रूहों ने इतराज किया उस नामे को कि असि इन्हों लोगों में जाना नहीं चाहते। उस वेले उस अनामी ने यह हुक्म किया, इस वक्त से असि पर दे चुके हैं, हूं तुम जाओ। अगर तुम सचमुच ही मेरे जीन होना चाहते हो, मेरे को अलग नहीं होना चाहिए, तो असी अपने गुरु सतगुरु स्वरूप संत भेजा गए, वो सच का होगा देंगे, हक का मेरा देंगे। तुम उस सौदे को पहचानना है और उदम करना है उस सौदे के नाल चलन का। उस वेले संत सतगुरु सानू दोबारा इस मुकाम से जितों तुम बिछड़ रहे हो पहुंचा। उस वक्त काल पुरुष ने तीसरा वर भी मान लिया कि संत जो है ना ये कोई चमत्कार नहीं दिखाऊ, कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं करना, इतना कि ये गुरु साहब का हुक्म सरवण करते हैं कि संत जो ने सब पुरुष के अवतार हैं। एक सवाल लाजमी अंदर आ जाता है कि अगर ये सब पुरुष के अवतार हैं जिसने काल में भी रचा है, सारी सृष्टि में भी रचा है, तो क्या उसकी कोई ताकत नहीं है? संतान क्यों इन्हों लोगों के लिए खजर होना पैदा है, कोई कमी है क्या? असल गल यही है कि सतगुरु जो हम हुक्म के पाबंद हैं, उसके हुक्म अंदर हैं, उस अनामी अवेलना नहीं कर सकते, अपनी जिंद वार देते हैं हक के नारे भी। संतान का आदर देख लो, जिंदे उगल गए, दूरिया से चढ़ गए, नीह चुना दे गए, खलां करवा ली, पर हुक्म नहीं मोड़िया, पाने मिठा करके जाने। ये है काल की चाल, तो संता का यह हचर करके जीवात्मा यह तसली दवाती है कि मैं ही ईश्वर हाँ, मैं ही सब कुछ हाँ। यह तीन बार लैकर के काल में यह हुक्म मिलया कि तू अपनी हद के अंदर रहना है, अपनी हद तो बाहर नहीं जाना, पंजवे मंडल से नहीं जा सकता, हुक्म नहीं है, अपने तरोकी का जीव की सीमा है और अपनी सीमा के अंदर बड़ी चलाकी और खूबसूरती के नाल इसने एक ऐसा महीन जाल बुनिया है जिसनु सिर्फ संत सतगुरु ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जीव की अपनी ताकत असीम होने के बावजूद कर्मा के वजह से लुप्त हो चुकी है, सदिया तो गुलाम है, उसको पता ही नहीं कि मेरा पिछोकड़ की है, मेरी की रस्ती है। ये जाल कैसा है जो कर्मा का विधान इस काल पुरुष ने बनाया है, एक नजर इसके ऊपर मारिए कितना सूक्ष्म है। सा अंदर जाता है लखों कीटाणु मरते हैं, सा बाहर जाता है लखा मरते हैं, एक कदम के अंदर कई लख मारे, हाथ हिलाना कई मारे, एक घुट पानी पीन के कई लखा जवानों खत्म होते। इस सब का एहसास इस काल पुरुष को चाहिए है। अगर अभी ये सोचिए कि इसकी हाथ तो बाहर निकल जाइए जाना है, तो विचार करो किस तरीके न जावे, किसी सहारे की जोड़ है, एक ऐसे सहारे की जिसकी ताकत इस काल पुरुष तो वध के हो, ताई इसकी आत्मा का उद्धार हो सकता है। अपने आप अभी समझी बैठे हैं किसी चिड़ी वर्ग आगम करके इन आसमाना पार करके चले जाना तो बिल्कुल असंभव है। उसके बाद इस काल पुरुष ने अपने को ईश्वर साबित करने वास्ते अवतार भेजे हैं, जिसका सब पुरुष ने अवतार संत हैं, उसका काल पुरुष ने भी अवतार है। कलगीधर पातशाह ने अपनी वाणी अंदर विष्णु भगवान के चौबी अवतारा की गणना की है। चौबी अवतारा को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के दो मुख अवतार हुए हैं और सब तो लंबी अवधि तक इन्होंने चौवा युगों ने भी इन्होंने अपनी दृष्टि का प्रतारा किया है। एक जगह किशन जी ने स्पष्ट किया है, हे अर्जुन मुझे तीनों लोगों में सब कुछ प्राप्त है, उसके बावजूद मैं खाता हूं, पीता हूं, विचरण करता हूं, मां बाप की भाई बहनों की सेवा करता हूं और सामाजिक कार्य करता हूं, किस लिए? ताकि तुम भी और सारी सृष्टि ऐसा ही आचरण करे। इस तो स्पष्ट हो जाता है श्लोक तो ये जो अवतार काल पुरुष ने भेजे आवागमन को पक्का करने वास्ते भेजे, यकीन कराने वास्ते भेजे कि किस तौर पर कुछ भी नहीं है। पर इन चौबी अवतारों के राक्षस और देवते ही मुख रहे हैं। जो जो राक्षस का जोर होया देवता ने बेदखल किया गया, क्यों क्यों विष्णु भगवान ने अवतार है। काल पुरुष भी अपने आप में लीन है उस अनामी की भक्ति के, बाकी सृष्टि का काम उसने तीन भगवानों को सौंप रखा है। तीन बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, जो सृष्टि को रच रहे हैं, चला रहे हैं और उसकी विलय कर रहे हैं। हर एक की सीमा निश्चित है, असि एक ब्रह्मांड को आज तक नहीं समझ सके, अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत आप है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। असि जिसकी चांद सूरज की जो पहुंच है उस तक नहीं पहुंच सकते, चांद की मिट्टी को लेके आए हैं, आज तक रोल रहे हैं, आज तक किसी निश्चित उपाय के नियम से नहीं पहुंच सकते। अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत धरतियां हैं, वाणी में भी स्पष्ट आया है, चेते चांद सूर चेते चेते मंडल देश। कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड खुश है, कोई इंचार्ज है उस ब्रह्मांड का, और उस ब्रह्मांड के बीच अगुण उसने तीन देवते अपहरण किए ने, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इस तो हिसाब लगा लो अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है, और उन्होंने आज उन्होंने छाया इस पिंड के अंदर शरीर के अंदर मौजूद है, और एक इंसान की जून दे अरवाई इंसान है। इस तो गिनती कर लो क्या आप ब्रह्मा विष्णु और शिव की गिनती कर सकते हैं। वाणी स्पष्ट किया गया है कि उसके दरबार के जिस तरह समुद्र के किनारे सी पर मोती पे होंगे घोंगे पे होंगे उस तरह ही ये देवते पे हुए। पर एक काल की बहुत गहरी और महीन चाल है, सारी ताकत जो काल पुरुष लै रहा है और हुक्म लै रहा है वो सब पुरुष तो लै रहा है, अनामी का कोई दखल इस नहीं। असि जिसनों ईश्वर करके जान रहे हैं दरअसल वो ईश्वर नहीं, वो ईश्वर की छाया है जो काल पुरुष के रूप में है। और इस तरीके इस काल पुरुष ने इस सारे सृष्टि का पसारा करके अपने हाथ में जी डोर पकड़ रखी है, और इतनी तिखी ताकत है और इतना सख्त कानून है कि दया के देश में बख्शिया जाता है, सिर्फ बख्शिया बख्शन हार है, दया ही दया है, दया ही दया है। और इसकी नगरी के बीच सिर्फ हिसाब है, हिसाब ही हिसाब है, कोई छूट नहीं है किसी भी तरीके की, कोई कितना भी मालिक का प्यारा है कि उसको भी नहीं बख्शता। सतपुरा लेके भी आगे खड़ हो जाता है, बेशक इस रूप में ले जाओ इसका हिसाब दे जाओ नहीं छोड़ता, ऐसा सख्त नियम इसने रखा है। अभी यह विचार करना है रूहानियत की चीज है, किस तरीके अभी सही मायने के इस अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। कट्टरवादता का विषय नहीं है, अभी सरदार हाँ, अभी मोने हाँ, अभी मुसलमान हाँ, ये सब साढ़े खड़े कीते हुए तरह पर दीवारा मजा हो। परमात्मा ने तो सिर्फ इस जीवात्मा बनाया है, काल ने कोठियां बनाइया के नाम रोक रखा है, ये विषय खोजता है विचारन का है, और जिसले ये खोज साड़ी पूरी हो जाए ये विचार करके जान लीजिए कि सच है और किसने भी साड़ा भला है, उस तो बाद सारी खोज में त्याग देना चाहिए, सारी डिस्कशन में त्याग देना चाहिए, सारे विचार छड़ देने चाहिए, और सिर्फ वो पला पकड़ लेना चाहिए जिन्हों पकड़ करके असी वो फायदा चुक सकते हैं, यानी दूर मुकाम पहुंच सकते हैं, आवागमन को निकल सकते हैं। एक मन की चाल है, ये मन की है। इस काल पुरुष ने 84 लाख जड़िया कोठरियां बनाईया, इन्हों कंट्रोल करने वास्ते जिसे ऊपर एक अवतार और ईश्वरी ताकत दिखिया उसे इंडिविजुअल तौर से इन्हों कंट्रोल करने ले अपना एक सब एजेंट एक जासूस जिसनों मन किया गया है, जिसके तीन रूप हैं कारण सूक्ष्म और पिंडी। इस वक्त पिंड रूप में असं है हाँ, तो पिंड रूप के मन साढ़े नाल लगा हुआ है। ये सारिया खबर अपने उस काल पुरुष को भेजता है, और असि सदिया तो इस मन के हुक्म में ही इसको खुश करन लगे हुए हैं, यही सारा प्रण है। वाणी के भी जिथे भी प्रण का जिक्र आया है वो तो यही प्रण है कि असि मन में सब कुछ समझ के बैठे हाँ, और जीवात्मा जो है इस शरीर में ही सब कुछ समझ बैठी है, अपनी चेतनता में पहुंच चुकी है। वड्डे महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अपने सत्संग की जगह बहुत सोहना उदाहरण दिता है, जीवात्मा जो बदलना था, ये जीवात्मा की चीज थी, ये राजकुमारी थी, इसका जन्म होया थी राजकरण वास्ते, पर एक गलती इसने कर ली, वो गलती की थी, इन्हें इश्क कर लिया, किसके नाल, एक चमार के नाल, एक राजकुमारी ने इश्क किया एक चमार के नाल, मां प्यो ने मजबूर होकर के उसके नाल ब्याह करा था। गुरु साहब मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा हम की देखते हैं, वो राजकुमारी जिसने राज करना थी फिर से दम से कोपरेट हो रही है, वजह क्यों? क्योंकि पति कमाल है, जो काम पति ने करना है कोई इस राजकुमारी को करना पड़े। और इस वाहियत की तकसीम किया तो मन जो है वो तुम्हार है, जो पति बड़ी बैठा है, और ये जो जीवात्मा है जो राजकुमारी थी इन्हें इस मन का लड़ पकड़ लिया है, और जो गंध के टोकरे तो हो रही है वो 84 लाख गुना का प्रमाण खा रही है, बार बार जीती है, बार बार मरती है, विषय विकारा की आग में जल रही है, वाणी भी जगह जगह सारे इशारे देते, तो सानू की फैसला करना चाहिए, मन का लाल पकड़ना चाहिए है या उस ऐसी ताकत की खोज करनी चाहिए है जड़ी इस कार पुरुष तो वध के रखती हो गए, तो सानू इस जगह पर कर के जाएगा, यही विचार कर और खोज करने का विषय है, और इसी को रूहानियत किया गया है, सही अर्थान पहचानना और सही फैसला करना। एक कोई मनुख है वो तो बहुत ज्यादा पढ़ जाता है, बहुत बड़े अहदे तक पहुंच जाता है, उसकी वजह की है? बुद्धि सारिया मिलती है, किसी को घट है, किसी को वध है, कर्मा का हिसाब है, पर बुद्धि सब कुछ है, पर फैसले जो समय रहते हैं वो मनुख करता है। जिस वे स्टूडेंट थी, बाकी के बच्चे बाहर खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हर विषय कारण मात्र, पर उस बच्चे ने की फैसला किया, किताबों में रमिया रहा, गुरु के हुक्म में रमिया रहा, उसका नतीजा की निकलिया, PhD कर गया, बड़े होते आते बैठ गया, अफसर बन गया, उसकी कलम जो ताकत आ गई जो किसी को भी फांसी में चढ़ा सकता है, उसका फैसला अटल है, निश्चित है, उसी उस तो ज्यादा जितने मर्जी सियाने हो पढ़े लिखे हो, पर जिस सरकार ने उस जज को बैंड किया है उस जगह थोड़ी कड़ी गलती, वो घंटी मार करके दरबार में कह सकता है कि सरदार को दरबार को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वक्त भी है, इसको बैठने का ढंग भी नहीं आता, इस तो अंदाजा लगा सकते हो कि पकड़ा हुआ दरबार की होगा। मेरे सामने इस किचड़ जो कट्टर आए ने, इस गंध जो कट्टर आए ने, और साडा की रवैया है बिल्कुल उल्टा, असी मास्टर बन के सत्संग में जाते हैं, क्या मास्टर बन के किसी क्लास को कुछ प्राप्त किया जा सकता है? अगर सचमुच कुछ प्राप्त करना है, ये भी स्कूल है, एक क्लास लगी हुई है, स्टूडेंट बन के आओ, आठवीं तक की कलम लेकर के आओ, तख्ती मांझी बिल्कुल गाठी मार के तुप्पे सीधी फुटी सुखा के बिल्कुल साफ, और दिमाग की कलम ना हो जो लिखो, ताई कोई लाभ हो सकता है, मास्टर बन के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मास्टर वही है जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है। तो साथ संगत जी, इस काल पुरुष की ताकत को गुरु साहबा ने बिल्कुल स्पष्ट करता है, प्रेम स्पष्ट करता है कि किस तरीके ना सानू उसने ऐसे रोक रखा है, और उसके बाद अभी यह विचार करना है कि अभी चौबीस घंटिया जो भी कर्म करते हैं, जिस भी तरीके के साधन और उपाय इकट्ठे करते हैं, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਉਪਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨ ਜਾਲ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਲ ਚ ਉਪਰਨ ਦਾ? ਸੱਚ ਰਤੇ ਤੇ ਉਗ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਪੁਰਸ਼। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੋ ਕਾਲ ਅਪਾਰ, ਪਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤਾਕਤ। ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਵਾਦੋ ਕਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਅਪਾਰ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਜਗਤ ਕਿਸਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਪ੍ਰਮੰਡ ਔਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੌੜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਵਿਵਾਦੋ ਕਾਲ ਬਿੰਦ ਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਹਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਗ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਜੋ ਕਾਲਪੁਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਰਸੇ ਤੇ ਉਭਰੇ, ਦੁਰਜਾ ਛੋੜ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਦੁਵਿਧਾ ਛੋੜ, ਵਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੇਨ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਚੇਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਜੋ ਹਨ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਵਰਗ ਹੀ ਸਵਰਗ, ਸਤਲੋਕ ਹੀ ਸਤਲੋਕ। ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਨ ਪੁੱਠੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਆਪ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਸੂਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਔਰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਗੰਢ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਢ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ, ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਕਰੀਏ ਪਰਚਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸਲੇ ਗੰਢ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਢ ਅਗਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਢ ਅਗਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਨ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਚੇਨਾਂ ਸੋ ਚੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਔਰ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਹ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਠ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੱਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਗੁਹੀਨ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਰਮੇਗਾ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਥਾ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਔਰ ਮਹੀਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਝੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਝੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਮਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਉਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲ ਅਗਰ ਮਿਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਵਰ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਕਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੜੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਕਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਔਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਨਾ, ਇਹੀ ਅੱਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਨਾਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਵਾ ਪਾਜ ਬਣ ਦੱਸੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਸਰਨ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜਾਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਖੰਡ ਬਾਦ ਆਦ ਦੀਪ ਸਭ ਮੁਕਾ ਲੋਹਾ। ਸਾਰੇ ਖੰਡ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਮਹੀਨ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਇੱਕ ਆਪ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਵਰਗਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮਨ ਇਸ ਦਾ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਖੰਡ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यानी कि गुरु पूरा होना चाहिए। जगह जगह भी देखते हैं अखंडी गुरुवाणी और संता भी ध्यान लगी हुई है। ये सब काल भी चाह है, काल बड़े बड़े सुंदर परिचया देना इस मन दे रहा है स्वामी पर बहा करके अच्छा कर्म करिए चाहे बारा करिए बहुत अच्छे करांगे यही देखते पहचानेंगे। बिना पूजन लगे हैं ना तो सारे सारे बिना पूजन ग्रहण करावा जा इसके अलावा कोई जो भी मैंने अच्छे कर्म दिखे और इन्होंने ठीक नहीं कहा सूर्य शरीर ना मिला सूक्ष्म दे 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 अपने कर्म को और फिर कोई पहले कर्म करांगे नकार बाजी होगा कोई आम चीज नहीं है ना नकार अभी शक्ति के बारे में जो भी है जो तुम्हारा समझ में आ रहा है वो चाहेगा आप जो Gracias.